الذين اذا اصابتهم مصیبت. یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے. کس کی مصیبت؟ دین کے راستے کی مصیبت پہنچی, کوئی بھی پہنچ گئی. قالوا انا للہ, سب سے پہلے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے. یہ صبر کا وہ درجہ جس سے میں نے بات شروع کی تھی آج کے سبق کی, کہ سب سے پہلا درجہ کہ دل میں اللہ سے راضی رہے. کوئی بات نہیں, انا للہ, اللہ میرا, میں اللہ کیوں, میرا اللہ میرے بارے میں جو چاہے. یہ پہلا درجہ ہے. دکھ تکلیف اور مصیبت کے وقت بندے کا دل اللہ سے جڑا رہے, یہ صبر کا پہلا درجہ ہے. پھر اس کا اگلا درجہ آتا ہے کہ زبان پہ شکوہ نہ آئے, ہائے کیا کر دیا, کیا سنائیں, کدھر ہیں. کچھ لوگوں کا وہ حال پوچھ لیں بس پھر آپ کا حال خراب ہے. انہوں نے اپنی دردیں شروع کرنی ہے, گھٹنوں سے لے کے ٹانگوں سے لے کے سر, پورے جسم کے ایک ایک جوڑ کو گنوا دیں گے. بس کیا آپ نے, پہ کہتے صبر کرتے ہیں, اتنی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں, ہائے کیا بتائیں تمہیں. یاد رکھیے, صابر وہ ہے کہ جو دکھ پہ کہ انا للہ, ہم اللہ کے. بھائی یہ میرا اور اللہ کا معاملہ تم کیوں بولتے ہو؟ ایک صحابی تھے غالباً یا کوئی بڑے عالم تھے, تو بیمار ہوئے, کوئی ان کے پاس گیا. اب دیکھ رہے کہ بیمار ہے, کہتے سنائیے کیا حال ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. پھر پوچھتے ہیں, پھر دو تین بار سنا کیا حال ہے کیسا. کہنے لگے جو بات میں منہ پہ نہیں لانا چاہتا مجھ سے کیوں سننا چاہتے ہو, کہ تم میرا حال اتنا کیوں پوچھتے ہو کہ میں کہہ دوں کہ بڑا درد ہے, بڑی چوٹ ہے, بڑی تکلیف ہے. اور ایک صحابی بیمار تھے اور تکلیف کی وجہ سے منہ سے اس نکل گئی, سعد بن معاذ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم اس کی بجائے اگر بسم اللہ کہہ دیتے تو فرشتے تم کو اٹھا لیتے. اتنی تکلیف اور پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہائے درد ہے, ہائے چوٹ ہے, کیونکہ زبان پہ لفظ کہ انا للہ, میرا رب میرے ساتھ برا نہیں کر سکتا, اور وانا الیہ راجعون, مجھے اس کی طرف پلٹنا. کیا ہوا اگر میری کو پیاری چیز اللہ کے راستے میں چلی گئی تو میں اللہ کی طرف نہ ہوں؟ آپ دیکھیے جس طرف آپ کی پیاری چیزیں ہوتی ہیں نا وہاں دل بہت لگتا ہے. کسی جگہ آپ کو اپنا دل لگانا ہے نا وہاں اپنا کوئی سامان بھیج دیں. چار کپڑے ہی آپ کے کہیں پڑے ہو نا تو آپ کا دل دماغ بار بار ادھر جائے گا, میری چیزیں ادھر پڑی ہیں ادھر پڑی. اور جہاں سے چیزیں اٹھتی ہیں وہاں سے دل بھی اٹھ جاتا ہے, کبھی پلٹ کے بھی نہیں بندہ ان جگہوں کو دیکھتا جس کے بغیر لگتا ہے کہ ہم رہ ہی نہیں سکتے. یہ نسخہ ہے کہ تم اللہ کی طرف جانا چاہتے ہو, اس سے پہلے تم اپنی چیزیں اللہ کی طرف بھیج دو. ایک شخص تھے تو انہوں نے ایک عالم سے کہا کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے, خوف میں آ جاتا ہوں, جیسے آپ کہیں کہ پینک ہو جاتا ہوں, آج کے دور کا خوبصورت لفظ. کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ چیزیں پسند ہیں, کوئی تمہاری من پسند چیزیں؟ انہوں نے کہا, کہنے لگے ایک ایک کر کے اس کو آگے بھیج دو, اللہ کے رستے میں دے دو. کیوں؟ کہا جہاں بندے کی من پسند چیزیں ہوتی نا وہاں جانے کو دل چاہتا ہے. جب تم اپنی پسند کی چیزیں وہاں پہنچا چکے ہو گے تو پھر تمہیں موت کا سن کے خوف نہیں آئے گا. انا الیہ راجعون. ذرا اس جملے پہ غور کیجیے, انا للہ جمع کا لفظ ہے. میں اکثر اس کو اپنی آسانی کے لیے واحد میں پڑھتی ہوں, انی للہ, میں اللہ کی ہوں. لکھیں ذرا اس کو. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی ہوں تو کیا آپ کو اس کے لیے موت کا انتظار ہے, اپنی یا کسی کی؟ یہ جملہ عموماً ہم اپنے پیاروں کی موت سے جوڑ دیتے ہیں. عموماً یہ جملہ بولے کوئی تو ہم سوچ لیتے ہیں اللہ خیر کرے کسی کے مرنے کی خبر آ گئی ہے. فون پہ بات کرتے ہوئے اگر کوئی یہ جملہ بولے تو بھی یہی فیلنگ آتی ہے. لیکن اصل میں یہ جملہ بندہ مومن کی زندگی بھر اس کی زبان پہ رہتا ہے. کیا؟ ہاں, قل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سورۃ الانعام کی آخری آیتیں ہیں کہ کہہ دیجئے بے شک میری عبادت, میری نماز, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. بندہ مومن زندگی بھر اللہ کا ہوتا ہے اور آخرت میں موت کی صورت میں اس کا حتمی اعلان کر دیتا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں, رحمتیں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی ہیں ہدایت پائے ہوئے لوگ. نوٹ کیجئے, دکھ کے وقت پہ خود کو اللہ کا کہنا اور اللہ کی طرف جانے کا اقرار کرنا. اللہ اس جملے پہ تین رحمتیں دے رہا ہے, صلوات, رحمہ اور مہتدون, سرٹیفکیٹس ہیں. یہ کون سی ہدایت ہے؟ بڑی گہری بات ہے اگر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کر سکیں. हम दुनिया में सोचते हैं हिदायत उसको मिलती है जो किताब पढ़ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इसी को कहते हैं ना। जैसे अब इस वक्त हम सब भी तो कुरान पढ़ने बैठे हैं तो हिदायत के लिए पढ़ रहे हैं ना, लेकिन अल्लाह किनको कह रहे हैं मुख्तदीन, जो दुख सुख में अल्लाह के फैसलों पे राजी रहते हैं। असल में ये किताब पढ़ने का आखिरी जो मुद्दा है ना, जो उसका आखिरी नतीजा था कि या कनाबुदु व या कनस्ताइन, उसकी तरफ इशारा है कि कुरान पढ़ के हिदायत लेनी है या दुख सुख में अल्लाह की रजा पे राजी होके हिदायत लेनी है। हिदायत तब मिलेगी जब अल्लाह के फैसलों पे राजी हो गए। देखिए ये दुनिया जन्नत नहीं है, यहाँ हर एक को अपनी मर्जी का नहीं मिलेगा, हत्ता के सब कुछ मिलने वालों के पास भी हर चीज अपनी मर्जी की नहीं होती। और कुछ नहीं तो बेटा है तो बेटी की ख्वाहिश है, बेटी नहीं तो बेटा है, बेटे हो जाएं तो बेटियां नहीं, बेटे बेटियां दोनों भी हो जाएंगे तो वो अच्छे नहीं, अच्छे हैं तो शक्ल अच्छी नहीं, रंग जरा और गोरा होना चाहिए था, कद जरा और लंबा होना चाहिए था। आप देखेंगे इस दुनिया की खुशियों में भी खुशी नहीं है। सोने जैसी चीजें मिल जाए आप उस सोने के अंदर फिर कहोगे नहीं इसमें नग जरूर होने चाहिए थे, कोई बात नहीं आर्टिफिशियल है लेकिन खूबसूरत तो लगते हैं ना, फर्क होता है ना। असल खुशी जन्नत में मिलेगी, इस दुनिया की चीज ही नहीं है खुशी, उसको पाने का एक ही तरीका है कि अल्लाह की रजा पे राजी रह जाए। मुसनद अहमद की एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है, हजरत अली कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब किसी मुसलमान को कोई रंज या मुसीबत पहुंचे, पहुंचती है ना, और इस पर ज्यादा वक्त गुजर जाए, यानी ये नहीं कि आज पहुंचा है, साल 10 साल 15 साल पहले, फिर उसको किसी दिन वो चीज याद आ जाए, वो प्यारा याद आ गया, माँ याद आ गई, बाप याद आ गया, वो बच्चा याद आ गया जो गोद से चला गया, तो वो फिर कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो जो मुसीबत के वक्त सबर करने का उसको अजर मिला था अल्लाह ताला उसको वही अजर देगा। गोया कि ये ने अजर को बढ़ाने वाला जुमला है, जब कोई प्यारा याद आए तो उस वक्त ये जुमला बोल रहे। इब्ने माजा की एक रिवायत है अबू सनान रहमहुल्ला से, कहते हैं कि मैंने अपने एक बच्चे को दफन किया, अभी मैं इसकी कब्र से बाहर ना निकला था यानी दफना कर, कि अबू तलखा खौलानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला और कहा सुनो मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। देखिए बच्चा मरा है उसको दफना रहे हैं और सहाबी कह रहे हैं मैं इनको खुशखबरी सुनाता हूँ, कैसी बुरी बात है, हम कहते हैं ये कोई वक्त है खुशखबरियाँ सुनाने का। खैर मैंने कहा सुनाओ, कहते मैंने अल्लाह के नबी सल्लम से सुना कि अल्लाह ताला मलकुल मौत से दरियाफ्त करता है, अल्लाह को सब कुछ पता है लेकिन हुज्जत तमाम करने के लिए क्या पूछता है मौत के फरिश्ते से कि तूने मेरे बंदे की आंखों की ठंडक और उसका कलेजे का टुकड़ा छीन लिया, यानी बच्चे की तरफ इशारा है, तो बताओ कि उस बंदे ने क्या कहा, यानी जब उसको अपने बच्चे की मौत की खबर मिली तो क्या कहा। तो फरिश्ता जवाब देता है कि अल्लाह तेरी तारीफ, उस बंदे ने तेरी तारीफ की कि अल्हम्दुलिल्लाह, और आखिर में इन्ना लिल्लाह पढ़ा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके लिए जन्नत में घर बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रख दो, कि मेरे बंदे ने दुख के वक्त मेरी तारीफ की और अब मैं इसको वो घर दूंगा। इतना कदरदान है, उलाइक अलैहिम सलावातु मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइक हुमुल मुहतदून। अल्लाह कभी आपकी ना कदरी नहीं करता, हमारे लिए इन सारी बातों में क्या है कि हर वक्त तैयार रहे, दुख तकलीफें आए तो खुशियां मनाएं, ठीक रास्ते पे है, कबूलियत का दर्जा अल्लाह ने कबूल कर लिया, और उस वक्त दुनिया में लोगों के सामने रोना धोना शिकवे गिले नहीं करने, दिल में अल्लाह से नाराज नहीं होना, और काम जो नेकियों के कर रहे थे उनको छोड़ना नहीं है, आप देखेंगे कि आपका दिल जिंदा होगा। कुरान में तो यहाँ तक है ना, हदीस में इससे ऊपर भी है थोड़ी सी दुआ, अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु सहाबी के नाते से हमें मिलती है। अव्वल हिजरत करने वाला जोड़ा था अबू सलमा और उम्मे सलमा, अल्लाह के नबी से जो सीखते थे ना घर आके उम्मे सलमा से शेयर करते थे। एक दिन आए और कहा आज अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई है कि जब किसी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचे तो उस वक्त कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के बाद अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलफली खैरा मिनहा, दो तीन लफ्जों के फर्क से ये कई जगह मिलती है, हसन मुस्लिम में भी मौजूद है, कि अल्लाह मुझे अजर दे उस मुसीबत में जिसमें तूने मुझे मुबतला किया और मुझे इसका बेहतरीन बदला दे। फरमाया कि आपने कहा है कि जो दुख में ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह ना सिर्फ उसको आखिरत में अजर देगा बल्कि दुनिया में इस चीज का नेमल बदल देगा, ऑल्टरनेट देगा। अल्लाह का करना देखिए कि चंद दिन के बाद अबू सलमा का इंतकाल हो गया और बीवी ने दुआ उन्हीं से सीख ली और इद्दत के दौरान यही दुआ मांग रही हैं। और दिल में क्या सोचती हैं, अबू सलमा जैसा सहाबी मुझे कहाँ मिलना है, इतना नेक अव्वल मुहाजिर। क्योंकि वो औरतें ये नहीं सोचती थी कि अब मेरी भी जिंदगी इसके साथ सती हो गई, बस अब मैं नहीं दोबारा शादी कर सकती, उनकी सोच ये नहीं थी। ये तो हमारी जाहिलाना सोच है, कोई जवानी में बेवा हो जाए सारी जिंदगी उसको उसी सूली पे लटका देते हैं। खैर, इद्दत खत्म हुई तो दरवाजा नॉक होता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौमे सलमा मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं आपको निकाह का पैगाम दूँ। अल्लाह के नबी मुझे? हाँ आपको। नहीं अल्लाह के नबी, मैं बड़ी उम्र की औरत हूँ। तो कहा मेरी भी उम्र कुछ कम नहीं है? कहा नहीं, मेरे बच्चे हैं। कहा आपके बच्चे मेरे बच्चे होंगे? कहा नहीं अल्लाह के नबी, मेरे मिजाज में गुस्सा है। ऐसा ना हो कहीं शौहर बीवी के नाते मैं कभी आपकी कदर ना करूं, कोई गुस्से में बात कहूं और नबूवत के मुकाम पे चोट पड़े। कहा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हारा गुस्सा कम कर दे। और इस तरह हजरत उम्मे सलमा उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो गई। क्यों? अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वाखलुफली खैर मिन्हा। हमारा यकीन कोई नहीं इन दुआओं पे, वैसे मांगते भी तो कहते होना का है, अब ये कैसे होगा। असल बात यह कि इंसान यकीन रखे, आपका हार टूट जाता है ना, आप मांगे अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वाखलुफली खैर मिन्हा, आपको अल्लाह उससे बेहतरीन देगा और आपका दिल कहेगा कि ये मुझे उसके बदले में मिला। चोरी हो गई, जेवर चला गया, बाप फौत हो गया, भाई चला गया, मांगिए, आपका दिल बताएगा कि अल्लाह दुनिया में आपको उसके बदले में कैसी खूबसूरत नेमतें देता है। असल बात अल्लाह के वादों पे यकीन है। बातें सब्र की हो रही थी, अब हम सब्र की एक अमली तस्वीर। बीबी हाजरा और इस्माइल शहादत हक के रास्ते के सब्र पढ़ रहे हैं ना, तो अल्लाह अब मेरे और आपके सामने एक रोल मॉडल लाता है, एक पूरे घराने का सब्र। बुढ़े इब्राहिम, बूढ़ी हाजरा और मासूम इस्माइल का सब्र और मुझे और आपको सिखाता है कि देखो इस शहादत हक के रास्ते में तुम अकेले नहीं, अपने घर वालों को भी लेकर चलोगे, फिर अल्लाह के घर आबाद होंगे। इन सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। फमन हज्जल बैता, जो कोई बैतुल्लाह का हज करे, अवे तमरो या उमरा करे, फला जुनाह अलैहि, फिर इस पर इस बात में कोई गुनाह नहीं, कहीं यतवफ बिहिमा, कि वो इन दोनों का तवाफ करे, दोनों से मुराद सफा और मरवा। हाँ वमन ततवा खैरन, पता कि ये लंबा होता है तवाफ, इसलिए जो कोई खुशी के साथ खैर करेगा तो फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह ताला कदरदान भी है और जानने वाला है। सफा मरवा की बात आती है तो बीबी हाजरा की बात आती है, आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन बचपन से ये बातें हम सुनते ही आ रहे हैं कि बीबी हाजरा और नन्हे इस्माइल को अल्लाह के नबी इब्राहिम बिल्कुल बंजर वादी में छोड़ आए थे। सब मारूफ कहानी है। फिर बच्चा प्यासा था, फिर माँ उस बच्चे के लिए पानी ढूंढ रही थी, इस तरह से भागती थी कि दूर कहीं कोई काफिला दिखे। जब सफा और मरवा दो पहाड़ियां हैं, उनके बीच में थोड़ी सी प्लेन जगह थी, आजकल तो थोड़ी चेंज हो गई है ना, पहले बिल्कुल सफा मरवा और बीच में इस तरह एक डम्प सा था। जब ऊपर होती थी तो बच्चा दिखता था तो आहिस्ता चलती थी, जब एक पहाड़ी से दूसरी के बीच में जाती तो बच्चा नहीं दिखता था तो भागती थी। अल्लाह को उस माँ का सब्र और अल्लाह की रजा पे राजी रहना इतना प्यारा लगा कि क्यामत तक के मर्दों को भी उसके नक्शे कदम पे चला दिया। हज हो नहीं सकता, उमरा कबूल होगा नहीं जब तक उसमें सफा और मरवा की सही न की जाए। ये है शाकिरन अलीमा, कदरदान। मैं और आप सिर्फ खुद निकल के आए हैं अभी अल्लाह के रास्ते में, और 4 घंटे के लिए कोई पहाड़ नहीं ढा दिया हमने अभी। जिस दिन हम अपने बच्चों और शौहरों को साथ लेकर इस रास्ते में निकलेंगे, फिर अल्लाह के घर आबाद होंगे इन शहरों में और इन मुल्कों में, और फिर अल्लाह आपके नक्शे कदम पे चलाएगा दूसरों को। यहाँ सब्र की अमली तस्वीर बताई जा रही है। वो भी बूढ़े थे, अगर आप बूढ़े हैं तो क्या हुआ, उनका भी मासूम बच्चा था, पहलोठी का बच्चा, दुआओं का बच्चा, 70-80 साल की उम्र में मिला हुआ बच्चा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन की दुआओं का नतीजा, और अल्लाह कहते मेरे रास्ते में का निकलो तो निकल पड़ो। आप जरा एक लम्हे के लिए खुद को इब्राहिम की जगह पे लाए, इतनी मन्नतों मुरादों से मांगा हुआ बच्चा, और अल्लाह कहता जाओ अब इसको इसकी माँ के साथ दूर छोड़ो, क्या जुबान पे लफ्ज आते। अल्लाह ये क्या भाई मेरे बुढ़ापे की औलाद, हम तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जमा कर कर के खजानों के अंदर भरते रहते हैं ना, फिर भी खौफ है कि पता नहीं इनका होगा क्या। इब्राहिम से अल्लाह ने उसका बच्चा मांग लिया, बीवी मांग ली, चले इब्राहिम तो नबी थे, क्या मुश्किल था। जरा हाजरा पे तो गौर कीजिए और अपने ऊपर ले, कोई आज अल्लाह के दीन का तकाजा हमें भी इस तरह घरों से निकाले और हमारे शौहर कहें कि चलो आओ इधर से हिजरत करके उधर चलते हैं छोड़ो, तो हम क्या कहते। कहते हैं कि रास्ते में बीबी हाजरा पूछ रही थी आप हमें उधर क्यों लेके जा रहे हैं। अरे इब्राहिम खामोश, कुछ बता दीजिए क्यों लेके जा रहे हैं। खामोश, कहा अच्छा बस एक बात बता दें कि हमसे नाराज होके तो नहीं हमें छोड़ रहे। कहा नहीं। कहा आपको अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। कहा जी अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा अल्लाह ने दिया है तो फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा, और अल्लाह जाया नहीं करता। आप भी अपनी दुआ में ये दुआ शामिल कर लें कि अल्लाह हमें जाया ना करना। अगर आज तूने हमारे हाथों में ये कुरान दे ही दिया है, हमें इतनी दूर से इधर बुला ही लिया है, तो अल्लाह अब ये ना हो कि यहाँ आके फिर सो सो के चले जाएं, और फिर जो घर में नहीं कर सकते थे वो यहाँ आजादी से करके चले जाएं। जरूरी नहीं होता कि बंदा अल्लाह के रास्ते में निकले तो कामयाब हो जाए जब तक मंजिल तक ना पहुंच जाए। और दूसरी बात, इधर सफा और मरवा के नाते में देखिए तो सफा और मरवा दो पहाड़ थे। हुआ क्या कि पीछे से तो ये बीबी हाजरा की सुन्नत रही, अल्लाह ने उसको हज और उमरे का हिस्सा बना दिया, लेकिन जूं ही वक्त गुजरा तो अरबों में बुत प्रस्ती आई ना, तो उन्होंने क्या किया कि दो बुत लिए, एक का नाम था असाफ और एक का नाम था नाइला। असल में ये लड़का लड़की थे, इन्होंने हरम की हदूद में जिना किया था, अल्लाह ताला ने उनको पत्थर का बना दिया। ये रिवायतें मिलती हैं हमें। पहले दौर के लोगों ने इबरत पकड़ने के लिए कि आज के बाद ये कोई काम ना करे, लड़के का बुत असाफ सफा पे और लड़की का बुत नाइला मरवा पे डाल के रख दिया कि इबरत पकड़ो, खबरदार अगर हरम की हदूद में ये गुनाह किया। शुरू की नस्लें जो थी वो इबरत लेती रही। जाहिल मुआशरों का हाल क्या है कि वक्त के साथ उन्होंने इनको बुत बना के, ये बड़े को पहुंचे हुए होंगे तभी हैं, उनका तबाफ शुरू कर दिया। अब जब इस्लाम आया, अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल कर दी कि भाई तुम्हें सफा मरवा के करना है, तो सहाबा के दिल में खौफ आया कि अल्लाह के नबी ये तो शिर्क है, वहां तो बुतों की पूजा है। तो कहा कि फला जुनाह अलैहि यतवफा बिहिमा। अब ला पे गौर कर ले, ये नहीं कहा कि गुनाह है बल्कि कहा गुनाह नहीं, मुराद ये है कि जो चीज असल में ठीक थी बीच में लोगों ने गड़बड़ कर दी, तो कहा नहीं तुम असल को सामने रखते हुए सफा और मरवा की सही बीबी हाजरा के नक्शे कदम पे करोगे, तुम ये बुतों की शक्ल में नहीं करोगे, ये मुराद है। यहां से आप इस्लाम का मिजाज भी देखें, चपकलश वाला नहीं है, क्लैशिंग नहीं है कि जो वो कहते हैं सब गलत कर दो, तुम अपनी ठीक चीज पे कायम रहो वो खुद गलत चले जाएंगे। और कहा खुशी से किया करो, थका ना करो, अल्लाह शाकिरन अलीमा। और जब कभी अल्लाह आपको मौका दे, जब भी आप वहां सफा और मरवा की सही करें, तो बीबी हाजरा को ना भूलें। मैं तो वहां जब भी कभी अल्लाह मौका दे दे तो मैं सोचती हूँ कि बीबी हाजरा की वो जो दौड़ और प्यास थी ना, वो सिर्फ एक बच्चे इस्माइल के लिए नहीं थी, वो नस्लों की प्यास थी। कल जैसे छोटा इस्माइल प्यासा तरस रहा था ना, आज की नस्लें भी तरस रही हैं। आज की भी औरत को इसी तरह अल्लाह के हुक्म पे दौड़ लगाने की जरूरत है। फिर अल्लाह ताला आप देखिएगा कि इस तरह अपने घरों को आबाद करेगा। कहा ये मिन शाइरिल्लाह, ये शऊर देती है। वमन युअज़्ज़िम शाइरिल्लाह फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब। सूरह हज आयत 32 में आता है कि जो अल्लाह के मुकर्रर करदा शायर का एहतराम करे तो ये दिल के तकवे की बात है। तो लिहाजा इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और इसके ऊपर अपने आप को रखो। यहाँ से एक और बात पता चलती है कि नेकियां खुशी से किया करो, तत्वा, ये नहीं कि कुमार बांध के सर पे खड़ा हो जाए फिर ही नेकी करनी है। नवाफिल की इसीलिए ज्यादा कदर है। एक चीज़ आपको मजबूर कर दिया जाता है आप सब ने करना है, वो तो अब करेंगे, हमें क्या पता खुशी से कर रहे हैं कि दुख से कर रहे हैं, अंदर से दिल में क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि चुपके से दूसरों की नजरें बचा के आप अल्लाह के लिए वो काम कर देते हैं, ये तत्वो है दिल की खुशी। और दुआ कीजिए कि दिल की खुशी बन जाए ये दिन। अब क्या खत्म होगी बात? नहीं, सब्र की बात नहीं चल रही है ना, शहादत हक है। इसके रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट, कुछ ऐसे दीनदार कि दीन के वो मसले छुपा लेते हैं जिस पे सब्र करना पड़ता है। अब इस तमहीद में आयत 159 सुनिए, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक जो लोग छुपा लेते हैं, अल्लाह जीना के नीचे लिख लीजिए दीन वाले उलमा, सू ही लिखेंगे तो बेहतर होगा। कौन? दीन वाले जो छुपा लेते हैं, मानजुलना मिनल बैजीनाति वल हुदा, वो बातें जिनको हमने अपनी किताब में लोगों के लिए खोल के बयान किया था, मिम्बा दिमा बैयन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, यानी जिन बातों को हमने लोगों की हिदायत के लिए खोल खोल के किताब में बयान कर दिया था, लेकिन लोग उसको छुपा लेते हैं। क्यों छुपा लेते हैं? ताकि लोग उनसे खुश रहें, पॉपुलैरिटी का ग्राफ ना डाउन हो। कंट्रोवर्शियल कह के सूद को भी हलाल कर लिया, कंट्रोवर्सी कह के जिना को भी हलाल कर दिया, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कर दी और बातों को यूं लचक पचक के किया कि बेचारों को कुरान पढ़ के हदीस पढ़ के भी नहीं समझ आती कि अब हम क्या करें, ये कर लो ठीक ये ना कर लो ठीक, यानी हलत मलत कर दिया दीन को। अल्लाह ताला कहते हैं उलाए कैल अनहुमुल्ला, ऐसे लोगों पर अल्लाह लानत भेजता है, अपनी रहमत से दूर करता है। वयल अनहुमुल्लाइनून, और लानत भेजते हैं इन पे और भी लानत करने वाले। अल्लाह कैसे इन पे लानत करता है कि अल्लाह के कलाम को छुपा लिया। देखिए मैं आपसे कुछ कहूँ कि जाके पीछे रिसेप्शन पे ये दो बातें क्या है, आप वहां जाके दो में से बस एक बात कह दें और एक छुपा दें जिसकी वजह से मेरी बात का असर ऑपोजिट जाए, मुझे पता चलेगा तो मुझे क्या लगेगा, अच्छा कि बुरा? तो जब अल्लाह के दीन की बातों को मैं इस वक्त कुरान पढ़ाते हुए छुपा लूं तो मैं अल्लाह को अच्छी लगूंगी? अल्लाह को तो इतना गुस्सा आता है उन दीनदारों पे जो सिर्फ ख्वाहिशों का गुलाम बनाने के लिए लोगों की नजरों में अपने आप को इन रखने के लिए दीन को छुपा लेते हैं। और आज के दौर का यही मसला है, बात तो दीन की हो रही है ना, जब लोग देखते हैं ना कि दीन की कुछ बातें आज के लाइफस्टाइल से टकराती हैं, गोरे कुछ और करते हैं, नॉन मुस्लिम कुछ और करते हैं, अब हम मुसलमान ये करेंगे तो बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगे, दिस दैट, तो क्या करें? तो वो फिर क्या कहते हैं, आओ इसके अंदर कुछ इख्तलाफी बातें ढूंढते हैं। दीन की कुछ बातों में वाकई इख्तलाफी बातें मौजूद हैं, लेकिन लिख लें कि वो सिर्फ फरोई बातें हैं, साइड इश्यूज हैं, इबादत में थोड़ी थोड़ी बातें, मामलात में कोई कुछ कह देगा कोई कुछ कह देगा, लेकिन दीन के बेसिक अकायद और दीन के जो पिलर्स हैं उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। मिसाल दे देती हूँ, सूद कुरान में मौजूद, आ गया पढ़ने ही वाले, इंशाल्लाह तीसरे पारे में आएगा सूरह बकरा में, आप खुद देख लेंगे कितना खोल के अल्लाह ने तीन चार दलाइल दी है जिसमें लफ्ज हराम भी है, जिसमें क्या कुछ है, सीधी सी बात है कुरान में आ गई, मान लो, तौफीक मांगो कि अल्लाह तौफीक दे। फिर लोग ऐसे उलमा को ढूंढते हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अब उलमा अपनी जान बचाने के लिए, कहीं गद्दी बचाने के लिए, कहीं शोहरत बचाने के लिए, हाँ इट्स अ कंट्रोवर्सी इशू, यक्तुमू नमानजल्ला, नतीजा क्या हुआ? लोग उनका नाम लेके सूद के काम करने शुरू हो जाते हैं। अब होगा क्या आखिरत में, वो लोग जिन्होंने ऐसे लोगों के नरम फतवों की वजह से इन चीज़ों पर अमल किया था, कल वो क्यामत पे इन पर लानत करेंगे कि भाई इनके कहने पर हमने किया था, हमें क्या पता। और मिम बादी माँ बैन ना हो, अल्लाह कहते हैं जो बातें हमने मैनिफेस्ट ट्रुथ की तरह क्लियर कट लोगों को बता दी फिल किताब, उसके बारे में दीन वालों से क्यों पूछते हो? कुरान से पढ़ो, तुम खुद किताब पढ़ते नहीं हो, दीनदारों के नाम पे कुछ ना कुछ करते हो, तो याद रखो अल्लाह की रहमतों से दूर हो गए। यहाँ से आपको दीन का मिजाज समझ आता है। हजरत अबू हुरैरा कहा करते थे, एक ये आयत और एक और आयत आती है, ये कुरान में ना होती ना तो मैं लोगों को कभी कोई हदीस ना सुनाता, लेकिन अगर मैं अब नहीं सुनाऊंगा तो मैं छुपाने वालों में आ जाऊंगा। हदीस में आता है जिसको हक बात पता हो लेकिन लोगों के डर से छुपा ले, ऐसे ही हैंकी पैंकी, तो क्यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। अब कर चुके, अब क्या करें? इल्लल्लज़ीना ताबू, तौबा कर ले मगर जो लोग, वसलहू और इस्लाह कर ले, वबैयनू और बयान करने लग जाए, जिन जुबानों से लोगों को लोरियां सुनाते थे, झूठ सच सुनाते थे, क्लियर करें कि नहीं मेरा शरह सदर हो गया, हक बात ये है, हलाल उबैन हराम उबैन, क्या अल्लाह ने हमें उलझे बुलझे दीन पे पैदा करना था? आप बताइए, आपको अपनी उलझी हुई अलमारियाँ अच्छी लगती हैं? आपको अपने उलझे हुए ड्रॉज अच्छे लगते हैं? अपनी जिंदगी में तो हम इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं कि छोटी चीजें इकट्ठी, बड़ी चीजें अलग, ये चमचों की अलमारियां, ये फलां की खाने, तो अल्लाह ने एक ऐसा दीन भेज दिया जिसपे मैं और आप अमल ही नहीं कर सकते, और कल वो क्यामत के दिन हमें उस पर पकड़ ले, क्या आपका दिल मानता है? अल्लाह ने इतना क्लियर कट दीन दिया है, सिर्फ लोगों को वही चीज कंट्रावर्शियल लगती है जो ख्वाहिशों पर चोट पड़ती है। ये सब्र के एंगल में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलात। मुश्किल लगता है ना डोंट्स पे रुकना, सूद से रुकना मुश्किल लगता है, बॉय फ्रेंडशिप गर्ल फ्रेंडशिप से रुकना मुश्किल लगता है, कहा रुको फिर अल्लाह अजर देगा। फरमाए फौलाए का तुबु अलैहि वाना तवाब रहीम, बस यही लोग हैं कि जिनकी तौबा मैं कबूल करता हूँ, और मैं खूब तौबा कबूल करने वाला मेहरबान हूँ। कितनी उम्मीद है इसमें। अब आप कहेंगे कि हम इस आयत पे अमल कैसे करें? देखिए पहली बात है कि हम अपने लिए भी सीख रहे हैं, दूसरों को ना तंग करें। अभी आप के सामे, सामे कहते हैं सुनने वाले, आप खुद हैं। अभी आपका मेरा वो मुकाम नहीं कि हम रात जाते लोगों को फतवे दे दें, जो बात जहाँ सुनी आधा जुमला जाके आज सूद पे ही बताना शुरू हो जाए। नेवर डू दिस। पूरी तैयारी से अपने शरह सदर पे पहले खुद को अमल करें। अभी आपका वो मुकाम नहीं ना आपको इजाजत है घर जाके लोगों पे तनकीद शुरू कर दें। आप आधी बात करके अगले की आधी सुन के या तो खुद ही कायल होके आ जाएंगे या अगले से बिगाड़ के आ जाएंगे। सबसे पहले अपनी इसलाह करें, फिर दूसरों की फिक्र करें। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जो लोग मर गए ये हैं वो दुखी उन लोगों पे कि जो शहादत हक को गालिब ना कर सके, इस दुनिया में दीन के तकाजों पे जिंदगी बसर ना कर सके, इनकार का रवैया। कफरू, कुफर के बड़े शेड हैं, अल्लाह को ना माना या अल्लाह के दीन को ना माना, अल्लाह के हुक्मों को ना माना। वह मातू, और वो मर भी गए। वह हम कुफार, जबकि वो कुफर पे थे यानी कुफर की हालत में मर गए। ओलाइक अलैहिम लानतुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है। वल मलाइकती, और फरिश्तों की। वन नासी अजमाइन, और सारे लोगों की। ये आयत क्या बता रही है? जिसका कुफर पे खात्मा हुआ, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, रबिया और इसी तरह के नाम, आप और मैं उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह कहते हैं ओलाइक अलैहिम लाना। कुफार के साथ हमदर्दी करनी है तो जिंदगी में करो, उनको दीन की तरफ बुला के हक की गवाहियां दो, इस पे सब्र करो, और अगर आपने उन पे रहम करना है तो उनको हिदायत की दुआ दो, इससे ज्यादा नहीं। जब वो दुनिया से चला गया तो अपने हाल पे अफसोस करो कि मैंने इसको पैगाम क्यों नहीं बचाया और ये कुफर पे मर गया, और कैसी जहन्नुम में जाएंगे, खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले उसमें। ला युखफ्फफ अन्हुमुल अज़ाब, नहीं हल्का किया जाएगा उनसे अजाब। वला हुम युनज़रून, और ना उनको ढील दी जाएगी, यानी टेम्परेचर भी 320 से 120 नहीं किया जाएगा। एक होती है ड्यूरेशन और एक होता है टेम्परेचर। चिकन को कितने वक्त के लिए ओवन में रखना है और एक ये कि कितनी हीट पे रखना है। अल्लाह कहते हैं ला युखफ्फ, ना तो उनकी ड्यूरेशन कम की जाएगी कि 45 मिनट की बजाय उनको सिर्फ 10 मिनट जहन्नुम के तंदूर में डाल दिया जाए, और ना उनका टेम्परेचर लोअर करके कि चलो थोड़ा सा हल्का कर ले। और जहन्नुम कितनी गर्म है, रिवायात में आता है कि जहन्नुमियों को अगर जहन्नुम से निकाल कर इस दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो सुकून के साथ सो जाए, इतनी गर्म आग है जहन्नुम। कितना बड़ा करम है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हमें नबी की उम्मती बनाया, और उससे भी बड़ा अल्लाह का एहसान कि उसने हमें किताब को पढ़ने वाला बना दिया। अब हम माने ना माने, चले ना चले, ये सारी बातें हैं। और कुफर का यहाँ बात है तो इसको सिर्फ एक कुफर पे ना रहे, छुपाना। अल्लाह को ना माने, अल्लाह के मुकाम को छुपा लिया तो काफिर, लिखने बल्कि आपको फायदा होगा। कुफर के दर्जे, अल्लाह को ना माने, उसको बड़ा ना माने तो काफिर। दूसरी बात, अल्लाह को माने मगर इसके हुक्मों को ना माने, हिदायात पे अमल ना करे तो काफिर। तीसरी बात, इसको तो माने कि अल्लाह भी बड़ा है और अल्लाह ने गाइडेंस दी, लेकिन अमली तौर पे उस पर अमल ना करे। बात वाज़ेह, माने कि कुरान सुन्नत पे अमल करना चाहिए लेकिन ना करे। फिर उससे अगली बात, नबियों को ना माने, अल्लाह के एक नबी को या बाकी नबियों को ना माने, वो भी काफिर। फिर अल्लाह ने नबियों के जरिए जो तालीमात दी, यानी आज के दौर में आप कह लें हदीस, सुन्नत, कुरान, अकायद, अखलाक, उसको ना माने, किसी को माने किसी को ना माने, और छठा दर्जा क्या होता है कि नजरिए के तौर पे सबको माने, जुबान से कहता रहे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अमलन अल्लाह के हुक्मों को जानते बूझते छोड़े, कहता रहे हाँ सूद हराम है हराम है, अमली तौर पे कह नहीं गुजारा नहीं होता गुजारा नहीं होता करता रहे। ये सब रवैये बगावत के रवैये हैं। पुराने नेमत है, शुक्र के मुकाबले में ये लफ्ज आता है। ना दिल से अल्लाह का एहसान माना, ना जुबान से मानी, ना जवारेह से मानी, ऐसे बंदे को अल्लाह कहाँ फेंके फिर। आग ही इसका मुकद्दर है, और हमेशा की आग, क्योंकि अगर इसको हमेशा की जिंदगी मिलती तो ये यही काम करता। तो जो बातें दिल को समझ आती हैं ना, उसको मनवाएं, अपना मुहासबा करें। मैं और आप ये सबक यकीन करें कि हम सबको अपना नहीं रखता, अल्लाह का बना देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारे सबक का खुलासा यही है कि इस जिंदगी भर अल्लाह के दीन को बुलंद करते रहो, अपने इस 5 फुट के जिस्म से शुरू करो, बच्चे, घर, शौहर, आहिस्ता आहिस्ता अपने इर्द गिर्द वालों के ऊपर, फिर माशरे में, सोसाइटी में, शहर में, फैलते फैलते मुल्क में, मुल्कों से दूसरे मुल्कों में, इस ग्लोब पे जहाँ तुम्हें कोई मौका मिले, अल्लाह का एहसान समझते हुए फौरन वहाँ पहुँच जाओ और मोहरें साबित कर दो कि हम सब ये करेंगे, और इस रास्ते में जो मुसीबतें आए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, खुशियाँ मनाओ। सहाबा के ऊपर अगर कोई मुश्किल नहीं आती थी ना तो दुखी हो जाते थे, कहते थे हमारे रब ने हमें भुला दिया, हमें याद नहीं रखा। वावेले ना करो, शोर ना करो। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन को जब कांटा भी चुभता है ये इससे भी कम तकलीफ, तो अल्लाह ताला उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है और एक गुना मिटा देता है। क्यों रोना, कदर वहां से मिलनी है। हदीस में आता है कि मोमिन को जब कोई थकन होती है या जिस्मानी दर्द लाहक होता है या कोई गम पेश आता है या कोई बीमारी पेश आती है या किसी बात का अंदेशा और खौफ, तो अल्लाह ताला इससे इसके गुनाहों को मिटा देते हैं। तिर्मिजी की रिवायत है। तो कौन नहीं चाहता कि ये हो। तो फिर अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ गम है तो खुशियाँ मनाएं, आप दूसरों से ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि कल अल्लाह ताला आपको ज़्यादा उसके बदले में नवाजने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके वक्त में बरकत दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون